दो भाई ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। दोनों शादीशुदा थे और दोनों के बच्चे भी थे। छोटा भाई फाइनेंशियली स्टेबलिश था और एक अच्छी फर्म में जॉब करता था, जबकि बड़ा भाई अपनी सैलरी से बमुश्किल गुजर बसर करता था। दोनों भाइयों में बहुत मोहब्बत थी। छोटे भाई की आदत थी कि जब भी वो कुछ खरीदता, जैसे कपड़े, बच्चों के लिए खिलौने या कोई भी चीज़ अपनी फैमिली के लिए लाता, तो वो अपने बड़े भाई और उनकी फैमिली के लिए भी लाजमी लाता। ये देखकर छोटे भाई की बीवी बहुत चढ़ती। वो सोचती, कमाए मेरा शौहर और मज़े ये लोग करें, मेहनत मेरा शौहर करे और मेवे ये लोग खाएँ। बीवी बार बार शौहर को सुनाती रहती, इतने ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो मुझे दे दो या अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सेविंग कर लो, ऐसे लुटाने की क्या ज़रूरत है। शौहर बीवी की बातों को अहमियत ना देता और उसके तानों को नज़रअंदाज करता। एक दिन ये हुआ कि जब शौहर जॉब से थका हारा वापस आया और एज़ यूजुअल जो सामान लाया था वो सब बच्चों में बांट दिया, फिर रूम में आया तो बीवी बजाए उसका हाल अहवाल पूछे शुरू हो जाती है, वही ताने और वही बातें सुनाती है। अब शौहर के माइंड में न जाने क्या चल रहा हो, ऑफिस की कोई टेंशन हो, काम का लोड हो, उसका पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में उठता है, बीवी का हाथ पकड़ता है और उसे अलमारी के पास ले जाता है। बीवी घबरा जाती है कि अचानक शौहर को क्या हो गया। शौहर अलमारी से एक किताब निकाल कर उसे पकड़ाता है। बीवी किताब का टाइटल पढ़ती है और समझ जाती है कि ये इसके शौहर की यूनिवर्सिटी की एक बुक है। शौहर कहता है, इसे खोलो। जब बीवी किताब खोलती है तो उसके पहले पेज पर एक स्टिकर लगा होता है जिस पर शौहर का नाम लिखा होता है। शौहर कहता है, स्टिकर हटाओ। जब बीवी स्टिकर हटाती है तो नीचे बड़े भाई का नाम होता है। बीवी हैरान होकर कहती है, ये तो जेठ जी की किताब है, फिर इस पर आपका नाम का स्टिकर क्यों लगा हुआ है। शौहर कहता है कि अगर इस पर यह स्टिकर ना होता तो आज हमारे ये हालात इतने अच्छे ना होते। फिर शौहर अपनी बीवी को बताता है कि बचपन में हमारे हालात ठीक नहीं थे, अब्बू की कमाई से गुजर बसर मुश्किल था, इसलिए भाई काम करने पर लग गए। भाई अपनी सैलरी से घर को भी सपोर्ट करते और अपनी फीस भी निकालते थे। जब मेरा इंटर हुआ तो मुझे भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था, लेकिन चूँकि मेरे पास कोई स्किल नहीं थी, एक दिन रात के खाने पर भाई ने कहा कि मेरे काम का लोड बहुत बढ़ गया है, मैं पढ़ाई नहीं सही कर पा रहा, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, इसलिए यूनिवर्सिटी कंटिन्यू नहीं कर सकता। फिर इसने मुझे देखकर कहा कि मैं यूनिवर्सिटी में दाखला ले लूं। मैंने ये सुना तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। अपने दाखिले की खुशी में मैं अपने भाई का गम ही नहीं देख पाया। खैर, मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और बाद में मुझे पता चला कि मेरा भाई तो यूनिवर्सिटी में टॉपर था, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, मेरा सिर्फ यूनिवर्सिटी जाने का शौक था, लेकिन मेरा भाई तो यूनिवर्सिटी के टॉपर्स में से था। उसने मेरे लिए ये कुर्बानी दी थी, ये सेक्रीफाइस किया था, तो आज जो कुछ भी मैं हूँ वो अपने बड़े भाई की वजह से हूँ। अगर उसने मेरे लिए वो कुर्बानी ना दी होती, सेक्रीफाइस ना किया होता अपनी यूनिवर्सिटी को, तो आज मेरी ज़िंदगी डिफरेंट होती, शायद मेरी जगह वो होता। सो मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी हर कामयाबी, मेरी हर कमाई में मेरे भाई का हिस्सा है। नाज़रीन, इंसान को लाइफ में जो भी कामयाबी, सक्सेस मिलती है, वो कभी भी सिर्फ उसके अकेले की एफर्ट का रिज़ल्ट नहीं होती, बल्कि सक्सेस यूजुअली कोलैबोरेटिव एफर्ट का रिज़ल्ट होती है। लाइफ का इनिशियल फेज़ जो हमारी लर्निंग, ग्रूमिंग और डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस फेज़ में जिन लोगों की एफर्ट हमारे फ्यूचर की सक्सेस का ग्राफ तय करती हैं, उन लोगों में एक बड़ा भाई भी होता है। बड़ा भाई वो होता है जो अपने ख्वाबों को पीछे छोड़कर अपने छोटे भाई बहनों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए अपनी तालीम और ख्वाहिशात को कुर्बान करता है। वो छोटे भाई बहन को अच्छी एजुकेशन देने के लिए सख्त मेहनत करता है और कभी कभी खुद के लिए आराम या खुशी छोड़कर उनको बेहतर तरबियत और फ्यूचर के लिए काम करता है। फादर को सपोर्ट करता है ताकि छोटे भाई बहन अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। बड़े भाई की कुर्बानियों से आप सब एग्री करेंगे, लेकिन नाज़रीन ज़रा सोचिएगा कि कैसा होगा वो भाई जिसने अपनी ख्वाहिश के लिए, अपनी डिज़ायर के लिए अपने भाई को अपना दुश्मन बना लिया और ये दुश्मनी इस हद तक पहुंच गई कि उसने अपने खून, अपने सगे भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आज हम जानेंगे ऐसे भाई का किस्सा जिसकी दुश्मनी तारीख इंसान कभी नहीं भुला सकती। आज हम जानेंगे इंसानी तारीख के सबसे पहले कातिल काबिल के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, काबिल। ناظرین، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی زوجہ حضرت حوا اس کائنات میں سب سے پہلے انسان تھے. ان دونوں سے پہلے اس دنیا میں کوئی انسان نہ تھا، اور انسانوں کی نسل ان دونوں سے ہی چلی ہے. اس لیے یہ دونوں حضرت آدم اور حضرت حوا تمام انسانوں کے ماں باپ ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے 40 بچے تھے، اور آپ کی نسل میں اللہ پاک نے اتنی برکت دی تھی کہ آپ کے انتقال کے وقت زمین پر آپ کی اولاد، پوتوں اور نواسوں سب کو ملا کر ٹوٹل 40,000 انسان موجود تھے. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ آپ کے ہاں صرف حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اکیلے ہوئی، ورنہ ان کے علاوہ آپ کے ہاں جب بھی اولاد ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی ساتھ پیدا ہوتے. اور حضرت شیش علیہ السلام کا معاملہ ایسا کیوں ہوا، اس کا ریزن کیا تھا، اس کے لیے آپ کو ایپیسوڈ اینڈ تک دیکھنا پڑے گا، اینڈ میں ریویل ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے پہلے قابیل اور اکلیمہ پیدا ہوئے، پھر ایک سال بعد حابیر اور لیودا پیدا ہوئے. اس ٹائم میں صرف حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی فیملی تھی، تو ان کے یہاں نکاح کا یہ سسٹم تھا کہ جو لڑکا لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کا نکاح دوسرے پیئر والی لڑکا یا لڑکی کا اس کے ساتھ ہوتا تھا. تو اب اس لاء کے مطابق حابیل کی شادی اکلیمہ سے اور قابیل کی شادی لیودا سے ہونی تھی، کیونکہ قابیل اور اکلیمہ ساتھ پیدا ہوئے تھے، اور اسی طرح حابیل اور لیودا بھی ساتھ پیدا ہوئے تھے. لیکن قابیل نے اس لاء کو، اس شرعی قانون کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ قابیل کی بہن اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اسی لیے قابیل چاہتا تھا کہ وہ اکلیمہ سے ہی شادی کرے. جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے قابیل کو سمجھایا اور فرمایا کہ بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اکلیمہ تمہاری بہن ہے اور وہ تم پر حرام ہے، اور یہ اللہ ہی کا حکم ہے، اسی لیے اکلیمہ کی شادی حابیل سے ہوگی، تم سے نہیں. اس معاملے کی وجہ سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے حسد پیدا ہو گیا، اور وہ حابیل سے دل ہی دل میں جل رہا تھا. اسی لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نصیحت نہ سمجھا، اور الٹا اپنے والد سے بدتمیزی کرنے لگا، اور کہنے لگا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ، اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ یہ آپ کی اپنی ہی رائے ہے، اور آپ حابیل کو زیادہ لائک کرتے ہیں، اسی لیے آپ اس کی فیور کر رہے ہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ قابیل کسی بھی طرح ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ پاک کا حکم نہیں ہے اور میں جھوٹ کہہ رہا ہوں اور حابیل کی فیور کر رہا ہوں، تو تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اکلیمہ سے شادی کر لے. اس آپشن کو حابیل اور قابیل دونوں نے ایکسیپٹ کر لیا. حابیل جانور پالتا تھا، تو اسے اپنے جانوروں میں سے ایک اچھا دمبا اس نے سلیکٹ کیا، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، تو اس نے اپنی قربانی کے لیے گندم سلیکٹ کی. لیکن ان دونوں کی سلیکشن میں ایک فرق تھا، وہ یہ کہ قابیل نے اس گندم میں سے اچھا گندم کھا لیا اور باقی بچا ہوا خراب گندم قربانی کے لیے رکھ دیا، جبکہ حابیل نے اپنے جانوروں میں سے قربانی کے لیے اچھا دمبا سلیکٹ کیا. اب اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ آیا، اور کس کی قربانی قبول ہوئی، یہ بتانے سے پہلے آپ کو تصویر کی دوسری سائڈ دکھاتا ہوں. وہ یہ کہ قابیل نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے دیے گئے آپشن کو ایکسیپٹ تو کر لیا تھا، لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا. حابیل نے جب قربانی پیش کی تھی تو اس کی نیت بالکل کلیئر تھی، اور اس نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا میں قبول کر لوں گا. لیکن قابیل کی نیت شروع سے ہی خراب تھی. اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ اگر میری قربانی قبول نہ ہوئی تب بھی میں اکلیمہ کو نہیں چھوڑوں گا اور اسی سے شادی کروں گا. یعنی اس کا قربانی کا ارادہ تھا ہی نہیں، وہ بس ایک فارمیلٹی پوری کر رہا تھا، شاید اس کا چانس لگ جائے. تو اس طرح قابیل اپنے بھائی کا حاسد، اپنے والد یعنی ایک نبی کا گستاخ ہونے کے ساتھ ساتھ اب منافق بھی بن گیا تھا. منافق کہتے ہیں جس کی زبان پہ کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور ہو. anyway, اب وہ گھڑی آ گئی تھی جس کا قابیل، حابیل اور حضرت آدم علیہ السلام کو انتظار تھا، اور اللہ پاک کی طرف سے فائنل ڈیسیجن آنے والا تھا. اب یہ پتہ چلنے والا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے اور کس کی مردود، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، کون صحیح ہے اور کون غلط. مگر یہ کیسے پتا چلے گا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی نہیں؟ دراصل اس زمانے میں آج کل کی طرح قربانی والی چیز کو کھایا نہیں جاتا تھا، بلکہ قربانی والی چیز کو ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا، اور قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کی چیز کو جلا دیتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اس کی قربانی کو آگ نہیں جلاتی. تو اسی وقت پتا چل جاتا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے اور کس کی نہیں. तो इस कानून के मुताबिक हाबील और काबील ने भी अपनी अपनी कुर्बानियाँ एक एक पहाड़ पर रख दी थीं, और फिर उसी ज़माने के रूल के मुताबिक आसमान से आग आई और उसने हाबील की कुर्बानी को जला दिया और काबील की गंदम यूं ही पड़ी रह गई। यानी अल्लाह पाक ने हाबील की कुर्बानी कबूल फरमा ली और फैसला फरमा दिया था कि अकलीमा की शादी हाबील से होगी न कि काबील से। अब जब आसमानी फैसला आ चुका तो काबील को अपनी ज़िद छोड़ देनी चाहिए थी और अल्लाह पाक के इस फैसले को कबूल कर लेना चाहिए था, लेकिन हसद की बीमारी ने उसे एक फर्माबरदार बेटा, एक हमदर्द भाई और एक अच्छा मुसलमान बनने के बजाय हक और सही रास्ते का दुश्मन बना दिया था, और उसने इस दुश्मनी की वजह से अल्लाह पाक और उसके प्यारे नबी का हुक्म इनकार कर दिया था, और मज़ीद ये कि उनकी शान में गुस्ताखी भी कर दी थी, और फिर हाबील से कहने लगा कि मैं अकलीमा से शादी तुझसे हरगिज़ नहीं होने दूँगा और मैं तुझे कत्ल कर दूँगा। हाबील ने काबील से साफ साफ कह दिया कि अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाते हो या हाथ उठाओगे तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अगर मुझे अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें कत्ल करना पड़े तो मैं खुद कत्ल हो जाऊंगा, लेकिन तुम पर अटैक नहीं करूंगा। हाबील की इस गुफ्तगू के बाद भी काबील के पत्थर दिल पर कोई असर ना हुआ और अब वो बाकायदा प्लानिंग करने में लग गया कि अपने भाई हाबील को कैसे कत्ल किया जाए। काबील ने हाबील को मारने का इरादा तो कर लिया था, लेकिन उसको कत्ल करने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये काम दुनिया में पहली बार होने जा रहा था। इसकी कोई मिसाल नहीं थी, कोई एग्जांपल नहीं थी, ये दुनिया में पहला कत्ल होने जा रहा था। फिर हुआ कुछ इस तरह कि शैतान काबील के सामने एक जानवर की शक्ल में आया और अपने साथ एक जानवर भी लाया। उसने काबील को टीच ऐसे किया कि उसने अपने साथ लाए हुए उस दूसरे जानवर का सर एक पत्थर पर रखा और दूसरे पत्थर से उसका सर कुचल दिया, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया, और इस तरह काबील ने कत्ल करने का तरीका सीखा। अब काबील को मौके की तलाश थी कि वो बिल्कुल उसी तरह आसानी के साथ अपने भाई को कत्ल कर दे। उसे ये मौका उस वक्त मिला जब एक दिन हाबील अपने जानवरों की देखभाल करते हुए थक गया और वो एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए सो गया। जब काबील को यकीन हो गया कि उसका भाई सो चुका है तो वो चुपके से अपने भाई के करीब गया और उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और इंतहाई बेदर्दी से हाबील का सर कुचल दिया, और यूँ काबील तारीख़ इंसानी का सबसे पहला कातिल बन गया। नाज़रीन, काबील ने अपने भाई को कत्ल तो कर दिया, लेकिन अब वो एक मुश्किल में फंस गया। वो ये कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हाबील की डेड बॉडी का क्या करे, क्योंकि ये सबसे पहला कत्ल था और काबील को इस बारे में किसी किस्म की नॉलेज तो थी नहीं। लिहाजा वो मारा मारा अपने भाई की लाश को एक थैले में डालकर अपनी पीठ पर लिए घूम रहा था। वो बॉडी को कहीं छोड़ इसलिए नहीं रहा था क्योंकि उसको दरिंदों का खौफ था कि कहीं उसकी लाश को चीर फाड़ ना दें। ये भी कितनी अजीब बात है कि खुद ज़िंदा इंसान को मार दिया और अब उसकी लाश की फ़िक्र है कि कोई इसे दरिंदा नुकसान ना पहुँचाए। इसलिए वो अपने भाई की लाश को 40 दिन या 40 साल तक लिए फिरता रहा, यहाँ तक कि थक गया। फिर अल्लाह पाक ने दो कौवों को भेजा और उनमें से एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया, और फिर उस पहले कौवे ने अपनी चोंच से और अपने पाँव से ज़मीन से मिट्टी हटाना शुरू की और एक खड्डा बनाया और उस मरे हुए कौवे को उस खड्डे में डालकर ऊपर से दोबारा मिट्टी डाल दी। इस तरह अल्लाह पाक ने एक कौवे के ज़रिए तमाम इंसानों को सिखा दिया कि जो लोग मर जाएं उनकी डेड बॉडी को ज़मीन के अंदर दफनाना है। लिहाजा काबील ने भी अपने भाई को ऐसे ही ज़मीन में दफना दिया। नाज़रीन, ये कत्ल मंगल के दिन हुआ था और उस वक्त हाबील की उम्र 20 से 25 साल के दरमियान थी। कत्ल का यह हादसा मक्का मुकर्रमा में जबल सौर या जबल हिरा की घाटी में हुआ, और कुछ तफसीरों में ये भी आता है कि बसरा में जिस जगह मस्जिद आज़म बनी हुई है वहाँ ये वाकया पेश आया था। रिवायात में ये भी आता है कि काबील ने जैसे ही अपने भाई को कत्ल किया उसका चेहरा बिल्कुल काला हो गया था, ब्लैक हो गया था। यहाँ मैं आपको ये भी बात बताता चलूं कि जिस वक्त काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल किया था उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद नहीं थे, बल्कि आप हज पर गए हुए थे, और जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उस दिन हज़रत आदम ने वहाँ कुछ अजीब व गरीब चीज़ें देखी, जैसे पहले किसी भी दरख्त में कांटे नहीं होते थे और फ्रूट्स कच्चे और खट्टे नहीं होते थे, बल्कि हाबील के कत्ल के बाद अचानक कुछ दरख्तों में कांटे निकल गए, कुछ फल खट्टे और कच्चे हो गए, और ज़मीन का रंग गंदुमी यानी ब्राउन हो गया, वरना पहले ज़मीन का रंग ऐसा नहीं था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया तो आप समझ गए को कोई बड़ा वाकया हुआ है। चुनाचे जब आप हज से वापस आए और आपको पता चला कि ये बड़ा वाकया हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा दुख में आ गए। इतना दुख हुआ आपको कि इसके बाद आप पूरी ज़िंदगी कभी नहीं मुस्कराए। तफसीर में ये भी आता है कि पहले दरिंदे और परिंदे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ मानूस थे, यानी दरिंदे और परिंदे इंसानों के पास और करीब रहते थे, उनके साथ मिलकर रहते थे, लेकिन जब काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया तो वो परिंदे फ़ज़ा में चले गए और दरिंदे जंगलों में चले गए। ये भी आता है कि जब काबील कत्ल हो गए तो 7 दिनों तक ज़मीन में जलजला रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गुस्सा होकर काबील को अपने दरबार से निकाल दिया और वो बदनसीब अकलीमा को साथ लेकर यमन की सरजमीन उदन में चला गया। वहाँ इबलीस उसके पास आकर कहने लगा कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खाया कि वो आग की पूजा यानी इबादत किया करता था, लिहाजा तू भी आग की पूजा कर। चुनांचे काबील वो पहला शख्स है जिसने आग की इबादत की और ये ज़मीन पर पहला शख्स है जिसने अल्लाह पाक की नाफरमानी और सबसे पहले ज़मीन पर नाहक खून किया, और यही वो पहला मुजरिम है जो जहन्नम में सबसे पहले डाला जाएगा। इसका अंजाम ये हुआ कि इसके एक बेटे ने जो कि अंधा था उसने एक पत्थर मारकर उसको कत्ल कर दिया, और ये बदबख्त एक नबी का बेटा होने के बावजूद आग की इबादत करते हुए कुफ्र और शिर्क की हालत में अपने लड़के के हाथ से पत्थर के साथ ही मारा गया। हाबील के कत्ल हो जाने के बाद से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में एक लड़का कम हो गया था, तो फिर अल्लाह पाक ने आपको 5 साल बाद एक बेटा अता फरमाया जिनका नाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम था। आप अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल की हो चुकी थी। अल्लाह ने इनको भी नबी बनाया। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं यानी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद ही में से हैं। नाज़रीन, ये था किस्सा इस दुनिया पर सबसे पहले इंसानी दुश्मन का जिसकी दुश्मनी ने उससे भाई का कत्ल करवा दिया।